लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर कलीसिया में लोकधर्मी विश्वासियों के मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बपतिस्मा संस्कार से पोषित होकर लोकधर्मी विश्वासी, विशेष रूप से महिलाएं, कलीसिया के अंतर्गत जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकाधिक भाग ले सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र 30 सितंबर को समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजगीर ने जनरल डिबेट का समापन करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक नेता व प्रतिनिधि महासभा के वार्षिक सत्र में व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ शिरकत नहीं कर पाए। फिर भी कोविड-19 से बचने के लिए किए गए एहतियाती उपाय बहुपक्षवाद को उच्चतम स्तर पर होने से नहीं रोक पाया। सभी देशों और सरकार के प्रमुखों ने पहले से ही रिकॉर्ड किए हुए वीडियो संदेशों के जरिए जनरल डिबेट में शिरकत की। हालांकि इस सत्र और जनरल डिबेट का मुख्य मुद्दा कोविड महामारी रहा, जिसमें ज्यादातर प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि विश्व परस्पर जुड़ा हुआ है और इसके लिए बहुपक्षीय समाधानों की आवश्यकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष यानी PGA वोल्कान बोजकिर ने महासभा की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित उच्च स्तरीय खंड का समापन करते हुए कहा कि ये बैठक सार्थक और असाधारण रही, जो वैश्विक महामारी कोविड-19 के माहौल में आयोजित करनी पड़ी।
थ्रू देयर वर्चुअल प्रेजेंस आवर पॉलिटिकल लीडर्स हैव डेमोंस्ट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म एंड द यूनाइटेड नेशंस।
वोल्कान बोजकिर कह रहे थे कि विश्व नेताओं ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी वर्चुअल मौजूदगी के जरिए बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र को अपना समर्थन जताया है। बहुत बड़ी संख्या में नेताओं ने अपने भाषणों में इस प्रतिबद्धता को जाहिर भी किया। बहुत से नेताओं ने खासतौर पर यह भी कहा कि बहुपक्षवाद वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी व्यवस्था मुहैया कराता है, जैसे कि कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन। उन्होंने कहा कि ये तथ्य कि इतनी बड़ी संख्या में विश्व नेताओं ने यूएन महासभा को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करने का विकल्प चुना, ये अपने आप में संयुक्त राष्ट्र की शक्ति व प्रासंगिकता का सबूत है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सचेत किया है कि यदि देशों ने कोविड-19 के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए अभी कार्यवाही नहीं की तो लैंगिक समानता के मुद्दे पर हुई प्रगति मुश्किल में पड़ जाएगी। यूएन महासचिव ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ऐतिहासिक चौथे बीजिंग विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर गुरुवार 1 अक्टूबर को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सरकारों को आह्वान किया कि महामारी पर जवाबी कार्रवाई और पुनर्बहाली प्रक्रिया के केंद्र में महिलाओं को रखना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
चीन की राजधानी बीजिंग में 25 वर्ष पहले आयोजित इस सम्मेलन के जरिए महिला अधिकारों को वैश्विक एजेंडा में ऊपर रखने के प्रयासों में मदद मिली थी। बीजिंग सम्मेलन का समापन एक अभूतपूर्व प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के साथ हुआ था, जो 12 क्षेत्रों में लिए गए संकल्पों पर आधारित था। इनमें शक्ति व निर्णय प्रक्रिया, निर्धनता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शिक्षा, मानवाधिकार और लड़कियों के साथ भेदभाव सहित चिंता के अन्य कारण शामिल थे। विभिन्न यूएन एजेंसियों के मुताबिक इस सम्मेलन के बाद से लैंगिक समानता के लिए वैश्विक लड़ाई में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 1995 में 12 देशों में राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख महिलाएं थी, अब ये संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। मातृत्व मृत्यु दर में 40% की कमी आई है। पहले से कहीं बड़ी संख्या में लड़कियां अब स्कूल जा रही हैं और महिलाएं शांति प्रक्रियाओं में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था की कार्यकारी निदेशक पुमजिले मलाम्बो निगुका ने कहा, कि प्रगति की रफ्तार धीमी रही है और ये पर्याप्त भी नहीं है। यूएन संस्था की प्रमुख ने कोविड-19 महामारी के बाद के दौर में बेहतर पुनर्बहाली के लिए महिला नेतृत्व, विशेषतः युवा महिला नेत्रियों को भूमिका दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यूएन एजेंसी की कार्यकारी निदेशक के मुताबिक ये समय महिलाओं व लड़कियों के लिए इतिहास की दिशा बदल देने वाली कार्रवाई का है, विशेष रूप से 25 से 34 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए जो अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में ज्यादा निर्धनता में रहने के लिए मजबूर हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महामारी कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 10,66,000 से ज्यादा होने पर कहा कि निसंदेह यह आंकड़ा एक तकलीफ देह पड़ाव के साथ हमारे दिमाग को सुन करने वाली है। कोरोना वायरस के फैलाव, कामकाज, रोजगारी और आमदनी खत्म होने के सिलसिले, शिक्षा में पैदा हुए व्यवधान और हमारी जिंदगी में अति उथल पुथल का अभी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। महासचिव अंतोनियो टेरेस ने सभी देशों से महामारी के खिलाफ एक असरदार वैक्सीन को हर किसी के लिए और हर जगह उपलब्ध कराने के लिए जरूरी वित्तीय साधनों की तत्काल इंतजाम के लिए पुकार लगाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने बताया कि यूएन एजेंसी अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर कोरोना वायरस का मिनटों में पता लगाने वाली रैपिड टेस्ट तैयार करने में जुटी हुई है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कोविड-19 महामारी पर काबू पाने की वैश्विक कार्रवाई में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके जरिए वैक्सीन, उपचार और निदान तेजी से विकसित करने और उसके न्यायसंगत वितरण के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में शुरू हुई इस पहल के लिए अब तक $3 अरब की राशि जुटाई गई है, लेकिन ये रकम पर्याप्त नहीं है। यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने बुधवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि इन प्रयासों को परिणति तक पहुंचाने के लिए $35 अरब की धनराशि की आवश्यकता है। परीक्षण और उपचार का दायरा व्यापक करने और वैश्विक कल्याण के लिए जनता वैक्सीन को हर स्थान पर हर एक व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए समर्थन देना सभी देशों के राष्ट्रीय और आर्थिक हित में है। इस बीच यूएन स्वास्थ्य एजेंसी और उसके साझेदार संगठन कोविड-19 टेस्ट के लिए 12 करोड़ त्वरित परीक्षण किटों को 130 से ज्यादा देशों में मुहैया कराने के कार्य में जुटे हैं। प्रति यूनिट $5 कीमत वाली ऐसी 12 करोड़ परीक्षण किटें अगले 6 महीनों में तैयार की जाएंगी, जिनसे निम्न और मध्य आय वाले देशों में परीक्षणों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। नई परीक्षण किटों के जरिए विश्वसनीय नतीजे कम कीमतों में घंटों या दिनों के बजाय 15 से 30 मिनट में हासिल किए जा सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के एक मानव अधिकार विशेषज्ञ ने भारत की राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे रहने वाले लगभग 2.5 लाख लोगों को अपने घरों से बेदखल करने के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संधियों के तहत देशों के दायित्वों का उल्लंघन होगा। अंशु शर्मा से आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
पर्याप्त आवास संबंधी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर बालकृष्णन राजगोपाल ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे रह रहे करीब 2.5 लाख लोगों को उन्हें अपनी बात रखने या उनके साथ कोई भी परामर्श किए बिना ही निष्कासित करने के फैसले पर चिंता व्यक्त की। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में रेलवे पटरियों के पास रहने वाले लगभग 48,000 घरों के लिए 31 अगस्त 2020 को एक निष्कासन आदेश जारी किया था, जिसमें उन घरों में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई थी। बालकृष्णन राजगोपाल ने कहा कि न्यायालय ने प्रभावित लोगों में से किसी के साथ भी पहले बातचीत या सुनवाई नहीं की। स्वतंत्र विशेषज्ञ ने चिंता व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि अदालत के शुरुआती फैसले में ये तक कहा गया था कि इस निष्कासन आदेश को पलटने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि लोगों को बेघर करने की कोई भी कोशिश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत मानव अधिकारों को लेकर भारत के दायित्वों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि बालकृष्णन राजगोपाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश को अस्थायी रूप से रोकने के दूसरे फैसले का भी स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसके तहत दी गई 4 सप्ताह की अवधि इतने सारे परिवारों के साथ परामर्श करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित पुनर्वास या पुनर्वास योजना पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगी।
आज के सभी विषय यूएन रेडियो द्वारा लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
मुझ में बसता पावन आत्मा ज्ञान वचन से भर दो मुझे,
मुझ में बसता पावन आत्मा ज्ञान वचन से भर दो मुझे,
ज्ञान वचन से भर दो मुझे, ज्ञान वचन से भर दो मुझे,
ज्ञान वचन से भर दो मुझे,
मुझ में बसता पावन आत्मा ज्ञान वचन से भर दो मुझे,
ज्ञान वचन से भर दो मुझे,
पावन आत्मा अंतर्यामी,
पावन आत्मा अंतर्यामी।
पावन आत्मा शांति प्रदाता सुख शांति का वर दो मुझे,
पावन आत्मा शांति प्रदाता सुख शांति का वर दो मुझे,
सुख शांति का वर दो मुझे।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन ने गुरुवार को प्रकाशित किया कि आगामी सप्ताह एक विशिष्ट वीडियो संदेश के माध्यम से संत पापा फ्रांसिस शिक्षा संबंधी विश्वव्यापी संविदा का पुनः प्रक्षेपण करेंगे। कैथोलिक शिक्षा संबंधी परम धर्म पीठे धर्म संघ ने गुरुवार को घोषित किया कि 15 अक्टूबर को रोम के संत जॉन लातेरान विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में शिक्षा पर संत पापा फ्रांसिस का एक वीडियो संदेश प्रसारित किया जाएगा। कैथोलिक शिक्षा संबंधी परम धर्म पीठीय धर्म संघ के वक्तव्य में कहा गया कि संत पापा फ्रांसिस एक बार पुनः शिक्षा के विषय पर विश्व को संबोधित करना चाहते हैं, जो उनकी शिक्षाओं और विश्व के साथ संवाद का केंद्र बिंदु रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने स्वयं कहा है कि शिक्षित करना आशा का कार्य है। परम धर्म पीठी धर्म संघ के वक्तव्य के अनुसार वीडियो संदेश के अंत में संत पापा फ्रांसिस का परामर्श है कि सभी शुभचिंतक ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन एजुकेशन अर्थात शिक्षा संबंधी विश्वव्यापी संविदा के साथ जुड़ें, क्योंकि यह संविदा विश्वव्यापी स्तर पर रचनात्मक परिवर्तन लाएगी ताकि शिक्षा भ्रातृत्व शांति और न्याय का अस्त्र बन सके, जिसकी कोविड महामारी के समय में पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। रोम के संत जॉन लातेरान परम धर्म पीठीय विश्वविद्यालय से प्रसारित होने वाला संत पापा फ्रांसिस का वीडियो संदेश विशेष रूप से अकादमी जगत और शिक्षा के सभी हितधारकों के प्रति समर्पित है, जो वेटिकन न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर ऑनलाइन अंग्रेजी फ्रेंच स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को वेटिकन के एक महिला संगठन को जारी संदेश में कलीसिया की महाआचार्य जर्मनी की संत हिल्डेगार्ड की भूरी भूरी प्रशंसा की। 8 अक्टूबर को जारी संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने 12वीं शताब्दी की दूरदर्शिता संत हिल्डेगार्ड की तुलना असीसी के संत फ्रांसिस से की, जो उनके नवीनतम विश्व पत्र फ्रतेल्ली तूती के प्रेरणा स्रोत हैं। संस्कृति संबंधी परम धर्म पीठी समिति के महिला परामर्शक दल को दिए संदेश में संत पापा ने कहा, असीसी के संत फ्रांसिस की तरह ही संत हिल्डेगार्ड ने भी एक मधुर और लयबद्ध भजन के द्वारा सृष्टि और सृष्टिकर्ता प्रभु की स्तुति की है। उन्होंने कहा, हिल्डेगार्ड ने वैज्ञानिक ज्ञान और आध्यात्मिकता को एकजुट किया है। 1000 साल के अंतराल में उन्होंने अपनी रचनाओं, अपनी व्याख्याओं और अपनी कला के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान की है। संत पापा ने इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित कराया कि जर्मनी की बेनेडिक्टाइन मठवासिनी संगीतकार और दार्शनिक सिस्टर हिल्डेगार्ड ने उस युग में महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने समय के दक्यानुसी रीति रिवाजों को तोड़ा, जो अध्ययन और पुस्तकालयों तक महिलाओं की पहुंच को रोकते थे, तथा मठाध्यक्षा होने के नाते उन्होंने अपनी धर्म बहनों को शिक्षा का पूरा पूरा मौका दिया। उन्होंने गाना तथा संगीत रचना सीखी, जो उनके लिए ईश्वर के करीब आने का एक सशक्त माध्यम था। कैथोलिक कलीसिया की महाचार्य जर्मनी की सिस्टर हिल्डेगार्ड फॉन बिंगेन 12वीं शताब्दी की एक जर्मन बेनेडिक्टाइन मठाध्यक्षा, लेखिका, संगीतकार, दर्शन शास्त्री, ख्रिस्ती रहस्यवादी और दूरदर्शी थी। वे मोनोफनी अर्थात एक स्वर में रचित भक्ति गीतों के सबसे प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक हैं। यूरोप में कई लोगों द्वारा उन्हें जर्मनी में वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास का संस्थापक माना जाता है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तरेला ने शुक्रवार को इटाली शहर कोमो में विगत माह मारे गए कैथोलिक पुरोहित फादर रॉबर्ट मल्गेसिनी को नागर वीरता के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। उत्तरी इटली के कोमो शहर में आवासहीन, आप्रवासी और शरणार्थियों की सेवा के लिए विख्यात 51 वर्षीय फादर रॉबर्ट मल्गेसिनी को उनके पल्ली संत रॉक्को गिरजाघर के प्रांगण में ही 15 सितंबर को छुरा भोंक कर मार डाला गया था। फादर का हत्यारा उन आप्रवासियों में से एक था जिनकी वे मदद किया करते थे। राष्ट्रपति ने मल्गेसिनी की पुरस्कार आज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करते हुए गुरुवार को कहा, उदार और अथक आत्मसमर्पण के साथ उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की। मानवीय एकजुटता के मूल्यों के एक यथार्थ व्याख्याकार के रूप में उन्होंने दुर्बल से दुर्बलतम लोगों की देखभाल की और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत और समर्थन किया। मानसिक विकारों से ग्रस्त ट्यूनिसिया के एक 53 वर्षीय आप्रवासी ने स्वतः को पुलिस के सुपुर्द कर यह स्वीकार किया था कि उसने ही छुरा भोंक कर फादर मल्गेसिनी की हत्या की थी। फादर मल्गेसिनी के साथ साथ विली मोंटेरो नामक एक युवक को भी मरणोपरांत इटली के नागर वीरता स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इटली में जन्मे विली मोंटेरो के माता पिता अफ्रीकी द्वीप के वैद राष्ट्र से हैं। 6 सितंबर को रोम में एक दोस्त के बचाव में आगे आए विली मोंटेरो को कुछ गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला था। राष्ट्रपति मत्तरेला ने कहा कि दोनों ही पुरुषों की हत्या हम सब के लिए परम बलिदान के बिंदु तक सेवा का एक उज्जवल उदाहरण है। बेल्जियम स्थित पाक्स क्रिस्टी नामक विश्वव्यापी कैथोलिक शांति संगठन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर कहा है कि संत पापा फ्रांसिस का नवीनतम विश्व पत्र फ्रतेली तूती अर्थात सब भाई भाई अहिंसा, आध्यात्मिकता और एक सुसंगत जीवन शैली का संकेत देता है। विश्व पत्र में विचारित विषयों के लिए संत पापा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शांति संगठन की विज्ञप्ति में कहा गया, यह समसामयिक दस्तावेज कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी संकट के बीच ध्रुवीकृत, हिंसक और अन्यायपूर्ण जगत की कटु वास्तविकताओं के दर्शन कराता तथा एक और अधिक न्यायिक, शांतिपूर्ण, समानता पर आधारित, आशावान एवं अहिंसक भविष्य की ओर मानवता को अग्रसर करता है। संगठन ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस हमें आमंत्रित करते हैं कि शांति का जिक्र करते समय हम युद्ध की क्रूरता और कठोर वास्तविकता पर चिंतन करना न भूलें। उनका नवीन विश्व पत्र वर्तमान युग के मनुष्यों को यथार्थ साक्षात्कार की संस्कृति के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। ऐसी संस्कृति जिसमें परस्पर संवाद तथा हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के प्रति एकात्मता का विकास हो सके। पाक्स क्रिस्टी इंटरनेशनल 120 राष्ट्रों का एक कैथोलिक शांति आंदोलन है जो अपने कल्याणकारी कार्यों द्वारा विश्व में शांति, मानवाधिकारों, न्याय और मेल मिलाप हेतु प्रयासरत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।